नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्ण भगवान की और अर्जुन की बहुत बातें हो रही थी। जनक जी का कल प्रसंग चला। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि अर्जुन, एक गुरु और एक चेले में बड़ा अच्छा मोक्ष का संवाद चला। एक दिन एक उत्तम व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मवेत्ता आचार्य, ध्यान से सुनिएगा, अपने आसन पर बैठा हुआ था। उसका तेज चारों तरफ फैल रहा था। उसमें अपार आनंद ही आनंद था। आनंद मानो उसमें समा ही नहीं रहा था। उस समय एक बुद्धिमान शिष्य उनके पास आया और कहने लगा, हे भगवान, मैं कल्याण की इच्छा से आपकी शरण में आया हूं। मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाकर ये याचना करता हूं कि मैं जो कुछ आपसे प्रश्न करूं, आप उसको कृपा पूर्वक उत्तर से मुझे समाहित कर दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये श्रेय क्या है, कल्याण क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जीव के चराचर स्वरूप कहां से पैदा हुए, किससे ये जीव जीवन धारण करते हैं, इनकी अधिक से अधिक आयु कितनी है, सत्य और तप क्या है, सत्पुरुषों ने किन गुणों की प्रशंसा की है, कौन कौन से मार्ग कल्याण करने वाले हैं, इस संसार में सबसे ऊंचा सुख क्या है और पाप किसे कहते हैं, ये सब जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। मैं बहुत दूर से चलकर आपके पास आया हूं। मैं रास्ते में कहीं अटका नहीं हूं। जाने में औरों के पास क्यों नहीं बैठा, क्यों नहीं पूछा, और मैं आप ही के पास क्यों आया हूं, इसे मैं भी नहीं जानता हूं। आपकी निराली शोभा छटा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। अब आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अर्जुन सुनकर के, प्रभु, ये तो कोई बड़ा विलक्षण जिज्ञासु है। भगवान ने कहा कि वह शिष्य सब प्रकार से गुरु की शरण में हो गया। वो बड़ा गुणवान था शिष्य, बड़ा शांत था। गुरु महाराज जो बात बोलते बड़े ध्यान से सुनता था। गुरु की सेवा में रहता था। वो चंचल नहीं था, जितेंद्रिय, संयमी, ब्रह्मचारी, मेधावी, व्रतधारी। गुरु ने उनके भावों को अच्छी तरह से समझ करके ठीक ठीक उत्तर दिया। गुरु ने कहा, बेटा, तुम जितने प्रश्न करते हो, इन सब प्रश्नों का समाधान वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर हो चुका है, और प्रधान प्रधान ऋषियों ने सदा उन्हीं का ही सेवन किया है। तुमने पूछा कि परब्रह्म क्या है, ये ज्ञान है, यही परब्रह्म है, और सबसे बड़ा तप तुमने पूछा कि सबसे अपना संबंध विच्छेद करना, ये तप है। शरीर भी मेरा नहीं है, और चीज तो कैसे कैसे मेरी हो सकती है, कौन मेरा हो सकता है। शरीर के साथ भी संबंध नहीं रखे, ये तप है। और जो ज्ञान तत्व को सबके अंदर देखता है वही सर्वगत माना जाता है। जो व्यक्ति किसी वस्तु की कामना नहीं करता है तथा जिसके मन में किसी बात का अभिमान नहीं होता है वह इस लोक में ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है। जो माया के गुणों के तत्व को जानता है उसे सब भूतों के कारण का ज्ञान है, तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया उसकी मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं है। सुनो पुत्र, यह देह एक वृक्ष के समान है। देखो गुरु लोग जब कभी पुत्र बोलते थे तो पुत्र का अर्थ होता है शाब्दिक पुत्र, शब्द पुत्र। ये गृहस्थ में तो शरीर पुत्र कहलाते हैं और संतों में शब्द पुत्र कहलाते हैं। तो सुनो पुत्र, यह देह एक वृक्ष के समान है, अज्ञान इसका मूल अंकुर है, बुद्धि स्कंद है, अहंकार शाखा है, इंद्रियां खोखले हैं, पंच महाभूत उसके विषय विशेष अवयव है और भूतों के विशेष भेद उसकी टहनियां हैं, संकल्प रूपी पत्ते हैं, कर्म रूपी फल है। शुभ अशुभ कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख दुख आदि में सदा लगे रहने वाला फल है। इस ब्रह्म रूपी बीज से प्रकट होकर प्रवाह रूप से सदा मौजूद रहने वाला देह रूपी वृक्ष समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। जो सबके तत्व को भली भांति जानकर ज्ञान रूपी तलवार से काट डालता है वह अमरत्व को प्राप्त होकर मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। ऐसे ये खूब विस्तार से ज्ञान बताया, सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, परमात्म तत्व की ज्ञान की कैसी महिमा है, अहंकार से पांच भूतों की उत्पत्ति होती है, अध्यात्म अधिदैव अधिभूत ये सब अहंकार से ही, तीन अहंकार से ही पैदा होते हैं, ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी गृहस्थी इनके क्या क्या कर्म होते हैं, इन सबको बताया। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितने कितने उपाय हैं ये सब बताया। इन सब के बाद अर्जुन ने पूछा कि महाराज वो गुरु कौन है और वो चेला कौन है, तो भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, ये आत्मा ही तो गुरु है और मन ही चेला है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। जिसको जितना ज्ञान है उस वो ज्ञान वाला तो है भाव गुरु, और मन जिसको जितना नहीं पकड़ सका है उसको वो चीज पकड़ानी, ये मन है शिष्य। ये बहुत गोपनीय चीज मैंने तुमको बताई है अर्जुन। अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं, पिताजी के दर्शन करना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए, तुम्हारी यदि राय हो तो मैं द्वारिका जाऊं। वैशम पायन जी कहते हैं कि हे जन्मे जय, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा चलो युधिष्ठिर जी से अपने मिलते हैं और उनकी आज्ञा लेकर आपको अब पूरी जाना भी तो जरूरी है, बहुत दिनों से आप हमारे साथ हैं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारू को रथ जोतने की आज्ञा दी और दारुक ने कह दिया रथ तैयार है। अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया कि चलो अपने जंगल में घूमने आए हैं, हस्तिनापुर चलते हैं। सब लोग हस्तिनापुर चलने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए, बड़े प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठकर कृष्ण से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर ने आप की कृपा से विजय पाई, आपकी कृपा से हमारे शत्रुओं का वध हुआ, आपकी कृपा से अकंटक राज्य प्राप्त किया, हम सभी पांडव आपसे सनात हैं, आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुंचे, आप ही जगत की आत्मा हो, संसार में सबसे श्रेष्ठ आप हो, मैं आपको उसी तरह से जानता हूं जिस प्रकार आप मुझे जानते हो, आपके ही तेज से सदा सर्वदा भूतों की उत्पत्ति होती है, नाना प्रकार की लीलाएं आपकी रति है, आकाश और पृथ्वी आपकी माया है, आप ही में समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज चार प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्पन्न करते हैं, निर्मल चांदनी में आपकी ही हंसी की छटा का दर्शन होता है, ऋतुएं आपकी इंद्रियां और सदा प्रवाहित होने वाला वायु आपका प्राण है, आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में है, आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है, महामते आप में रति तुष्टि धृति क्षांति मति कांति आदि अनेक गुण विराजमान हैं। प्रलय में आप ही मृत्यु के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं सुदीर्घ काल तक आपके गुणों का वर्णन करता रहूं तो भी उसका पार नहीं पा सकता। हे कमल नयन, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही जगत हो, आप ही जीव हो, आप ही चर हो अचर हो, आप ही परिवर्तनशील हो, आप ही अपरिवर्तनशील हो, जो कुछ हो सब आप हो, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, आप अजेय हैं। मैंने ब्रह्मर्षि नारद देवल कृष्ण द्वैपायन व्यास तथा पितामह भीष्म के मुख से आपकी महिमा के विषय में बहुत सुना है, सारा जगत आप में ओतप्रोत है, जैसे कपड़ा तंतुओं में ओतप्रोत है, जैसे घड़ा मिट्टी से ओतप्रोत है, जैसे गहना सोने से ओतप्रोत है, ऐसे आप हो। आपने मुझको कृपा करके जो ज्ञान दिया है उसको मैं यथावत धारण करूंगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने कितना बड़ा अद्भुत कार्य किया। धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार डाला गया, कौरवों की सेना को आपने ही अपने तेज से भस्म किया, तभी लोग हमको विजय का श्रेय देते हैं। आपका ये दूसरों को मान देने का कैसा विलक्षण स्वभाव है। आपने ऐसे ऐसे उपाय किए कि हम लोगों को विजय सुलभ हो गई। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई। कारण पापी जयद्रथ और भूरी सेवा के वध का ठीक ठीक उपाय आपने बताया। हे देवकी नंदन, आपने प्रेम बस जो जो उपदेश दिया वो केवल मैं सुनने का विषय नहीं रखूंगा, उन सबको मैं आचरण में लाऊंगा। मुझे उस पर कोई नया विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो कहा है वो विचार पूर्वक कहा है, उसमें नया विचार क्या करेंगे, जो कहा वो हमें मानना है। परंतु कृष्ण, आप द्वारिका जाना चाहते हैं, जाइए। मैं आपको कहने में तो यही कहूंगा, परंतु आपका वियोग हमारे हृदय में कष्ट तो देता है। धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने की आज्ञा दिलवाने का प्रयत्न करूंगा, परंतु दिल तो मेरा भी रोता है। अब शीघ्र ही आप मामा जी के दर्शन करेंगे और अजय बलभद्र जी से मिलेंगे, अपने वृष्णिवंशियों से मिलेंगे, लेकिन हमसे तो आप बिछुड़ेंगे। ऐसी बड़ी प्रेम की बातें होती रही और हस्तिनापुर पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के एक क्षण भी वियोग में हो जाने पर सब नर नारी बेहाल हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण के नगर में प्रवेश करते ही सब निहाल हो गए, पहले तो बेहाल अब निहाल। फिर इंद्र भवन के समान शोभा वाली राजमहल की सभा, जिसमें महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत बुद्धिमान विदुर जी, राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष वीर भीमसेन, माद्रीनंदन नकुल सहदेव, धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहने वाला अपराजित वीर युयुत्सु, परम बुद्धिमती गांधारी, धैर्यवती कुंती, पतिव्रता द्रौपदी, पुत्रवत्सला सुभद्रा इत्यादि भरत वंश के सभी स्त्रियों से भी एक एक से मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा कृष्ण और अर्जुन ने अपना नाम बताते हुए दोनों का चरण स्पर्श किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन, कृष्ण हो? अर्जुन ने कहा, हां। कैसे आए? अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण, अब तुम जाते हो तो हमारा दिल बहुत दुखता है। ऐसे गांधारी, कुंती सबके पैर छुए, युधिष्ठिर के पैर छुए, भीमसेन के पैर छुए, भीमसेन के पैर छूते भगवान, और भीमसेन भी सबके बीच में आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद छोटे थे भगवान, भीमसेन भगवान का प्रेमी था। अर्जुन आदि तो कई बार प्रश्न करे, भीमसेन कभी भगवान से प्रश्न करता ही नहीं। विदुर जी से मिले और सबके साथ कुछ देर तक राजा धृतराष्ट्र के पास में बैठे रहे। रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से सब अपने अपने स्थान लौट आए। महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए, उन्हीं के महल में ही रहते थे। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ, इच्छानुसार भोजन किया। अर्जुन के साथ भगवान सो रहे थे। रात बीत गई, प्रातःकाल हुआ, संध्या वंदन आदि करके वे दोनों महाराज धृतराष्ट्र के महल में गए, युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। उस समय भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों मित्र एक आसन पर बैठ गए। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे क्या कहना चाहते हैं, इसलिए पहले ही बोल दिए, वीरवरों मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो, जो भी कहना चाहो कहो, मैं वो सब काम पूरा करूंगा, तुम मन में कोई दूसरा विचार मत करना। बातचीत में बड़े चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास बड़े विनय भाव से कहा, राजन महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहां रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिता का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दें तभी ये द्वारकापुरी को जाएंगे, अतः मेरी प्रार्थना है आप इन्हें जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन आपका कल्याण हो, आप सूर नंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारिका जाइए, आपकी यात्रा में मेरी पूर्ण सम्मति है, आपने मेरे मामा जी और मामी जी को बहुत दिनों से नहीं देखा है, वसुदेव जी मामा, देवकी जी मामी, बहुत दिनों से नहीं देखा है, अतः वहां जाकर आप उनसे मिलिए और हमारी ओर से मामा जी मामी जी को प्रणाम बोलिएगा, भैया बलदाऊ को यथायोग्य सत्कार बोलिएगा। हे भक्तों के मान बढ़ाने वाले श्री कृष्ण, द्वारिका जाने पर आप भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव के साथ मेरी भी याद बनाए रखिएगा। हे महाभाव, आनर्त देश की प्रजा अपने माता पिता तथा वृष्णिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह तरह के रत्न धन और दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिएगा। केशव, आप ही की कृपा से आज हम निस्सपत्न हो गए, अर्थात हमारा कोई शत्रु नहीं रहा, सारी पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में है, ये सब कुछ आपका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहु ये रत्न धन समूची पृथ्वी केवल आपकी है, यही नहीं मेरे घर का जो भी धन वैभव है वो भी आपका है। युधिष्ठिर जी ने कहा, जो आज्ञा। भगवान अपनी बुआ कुंती के पास गए, कुंती के चरणों में बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। कुंती ने कृष्ण का बड़ा स्नेह किया, अपनी छाती से लगाया और कहा, बेटा तुम विदा हो रहे हो, भैया वसुदेव को कहना कि कभी मिला ही नहीं, कभी आवे और कभी वो भी हमसे मिले। फिर विदुर जी के पास गए, सबसे बड़े सम्मानित होकर युधिष्ठिर कुंती को पुनः प्रणाम करके सुभद्रा के साथ बहुत हंसी मजाक की बात करते हुए वे दिव्य रथ पर बैठ गए और हस्तिनापुर से बाहर निकल गए। सुभद्रा छोटी बहन थी ना, तो भगवान उससे बहुत हंसी मजाक करते रहते थे। उस समय नगर के निवासी चारों तरफ उनको रथ से घेर लिए। कपिध्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी, गजराज के समान पराक्रमी भीमसेन, सब लोग भगवान कृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक गए। तदनंतर भगवान कृष्ण ने कौरवों और विदुर जी को लौटाया और सबको विदा करके दारुक को आज्ञा दी, दारुक अब घोड़ों को बड़े तेजी के साथ हाको। अर्जुन भगवान को कई देर तक देखते रहे, जब तक भगवान का रथ ओझल नहीं हुआ तब तक देखते रहे। भगवान भी बार बार रथ के पीछे अर्जुन को देखते रहे, दोनों की दृष्टि अटकी हुई थी। बड़ी कठिनता से कृष्ण की दृष्टि अर्जुन से हटी और अर्जुन की दृष्टि कृष्ण से हटी। इस प्रकार भगवान आगे पधार गए। अब ऐसी कथा है कि जिसको चालू करे तो कई देर तक पूरी नहीं होगी। कथा का कायदा है कि अच्छी जगह पर उसको विश्राम देना चाहिए। तो अभी ऐसी कथा आएगी, शकुन अच्छे नहीं हो रहे हैं, ऐसी कथा है, इसलिए यहां विराम न करके आगे चलेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।